ऐसा बोला जाता है कि नाम चूत होता है तो ये जीव विकल्प में आ गया है। श्रद्धा तो चिपकी हुई रहता है, श्रद्धा की परिणति तो चलती रहती है, प्रतिक्री रूप परिणति चलती ही रहती है, उसमें कोई विशेष नहीं आता। ऐसी जो बात आज दोनों सेशन में चली है और नायक भाव ऐसा है और परिणामी स्वभाव ऐसा है, शुद्ध भाव परिपूर्ण तत्व उदार स्वभाव दूर स्वभाव, इसमें उत्पाद के भी संयोग रूप होता है। ऐसा प्रचार की कार्य में गुरुकुल आचार्य देव ने बताया जो गुरुदेव ने आज स्पष्ट किया था होगा, इतनी कृपा की ध्वजे की उसको महिमा आनी चाहिए कि पर्याय ध्वजे का लक्ष्य करती है, ऐसा भी पर्याय के कथन उसका बद हो जाना चाहिए और मैं एक शुद्ध कृपा की ध्वज आत्मा हूं, ऐसा पोहा कौन करता है ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए। उसी का नाम पर्याय की शुद्धता है। ऐसा परिणमन 320 गाथा बता रही है, इसमें बहुत से बिंदु है 320 गाथा में। मुझे गुरुदेव श्री ने तो उसके प्रवचनों में बहुत स्पष्टीकरण किया है, जितना अपने पास समय है उसमें अपन उसका एक एक भाव की चर्चा करेंगे। वंशमोक्ष के पर्याय की चर्चा है, जीवत्व भव्यत्व अभ्यवत्व की बहुत अच्छी चर्चा उसमें आई है। तीनों पारिणामिक भाव होते हुए भी वो भगवान का विषय में से भी सुधरने का विषय कैसे निकले, वो चर्चा भी बहुत अच्छी तरह से उसमें आने वाली है। एक पारिणामिक भाव रूप है, एक परम पारिणामिक भाव रूप है, ऐसी बहुत सुस्त चर्चा है 320 गाथा में दही हुई है और इन गाथा को अपन पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से समझ के आचार्य भगवान ने तो पूर्ण रहस्य उसमें डाल दिए है, मगर अपने पास अपने धर्म पिता पूज्य गुरुदेव जी है उसने उस गाथा को बहुत सरल बना दिया है और बहुत सरल भाषा में मूल अध्यात्म ऐसे परोस दिया है कि सचमुच जैसे भाई साहब ने दृष्टांत दिया कि वो हलवा है और जिसके पास दांत नहीं है वो भी आराम से खा सकता है, ऐसा ये माल परोस के श्री गुरुदेव जी ने अपने को दिया है। बस ये अपना श्रद्धा का विषय जो श्रद्धेय है, ज्ञान का जो वास्तविक नई नायक भाव है, ध्यान का जो ध्येय है, ऐसा जो शुद्ध स्वभाव मैं हूं, ऐसी प्रतीति ज्ञान और भ्रमण का प्रत्येक जीव को हो जाए, ऐसी ये अपूर्व गाथा है। आज का संक्षिप्त कार्य इतना है, बाकी प्रश्न वो है उसमें अपन एक के बाद एक उसका निराकरण करेंगे। मैं अभी संजीव जी को ये माइक दे रहा हूँ।
चार अनुयोगों के द्वारा वीतरागता की सिद्धि इस विषय को लेकर ये शिविर यहाँ चल रहा है और इस शिविर में आज शिविर के पांचवें दिवस मेरा विषय करणानुयोग के माध्यम से वीतरागता की सिद्धि ये विषय था, जो चार दिनों तक मुझे करणानुयोग से वीतरागता की सिद्धि के संदर्भ में ही चर्चा की करनी है और आज दो सेशन के माध्यम से मैंने इसी बात को सिद्ध करने की कोशिश की है कि करणानुयोग की चर्चाएं अप्रयोजन भूत नहीं है, उनसे भी अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। करणानुयोग की बातों को ये कहना ये जिनवाणी का अवर्णवाद है, जिनवाणी का अपमान है। करणानुयोग के विषय भेद विज्ञान की सिद्धि भी करते हैं, करणानुयोग के विषय पुरुषार्थ प्रेरक भी होते हैं। करणानुयोग की चर्चाएं इस जीव को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए भी कार्यकारी हैं। गुण स्थानों से प्रयोजन की सिद्धि की चर्चा भी आज दोपहर वाले सेशन में हुई है। पूरी चर्चा का सार इतना ही था कि करणानुरूप की चर्चाएं ये मोक्ष मार्ग में इस जीव के लिए अन्य तीन अनुयोगों के समान ही उपयोगी है, पढ़ने समझने और स्वीकार करने योग्य है। ये पूरी चर्चा का सार है। बाकी तो बहुत सारे बिंदु कहे गए थे, उसकी सत्यता, उसकी प्रामाणिकता और अन्य अनुयोगों को करणानुरूप के बिना आप सिद्ध नहीं कर सकते हो, ये चर्चा भी आई है। इसके अलावा ये बातें काल्पनिक नहीं है, क्योंकि काल्पनिक बातें सबकी अलग अलग होती है और यहाँ तो समस्त वितरागी संतों के द्वारा एक स्वर में एक ही तरह की बात कही जाती है, चाहे वो कर्म बंधन के संदर्भ में हो, चाहे गुणस्थानों के संदर्भ में हो, चाहे जीव समास मार्गान आदि के बारे में हो, यहाँ तक कि लोक के संदर्भ में भी। पचासों ग्रंथों के प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ, जिसमें नंदीश्वर दीप ने 52 जिनालयों की चर्चा की। तो कोई भी वितरागी संत कहेंगे तो यही कहेंगे 52 जिनालय। अब आप कहते हो कि ये काल्पनिक है, तो मैं कहता हूँ कल्पना से कहते तो कोई व्यक्ति तो 50-60 लिखता, 70 लिखता, कोई तो ये लिखता कि 150 है। कल्पना तो कल्पना ही, कोई व्यक्ति कुछ भी बात कह सकता था कल्पना में, तो सबकी कल्पना एक जैसी कैसे हो सकती है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी भी ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, तो आप अपनी कल्पना से कुछ का कुछ कहेंगे? तो करणानुयोग के विषय ऐसे नहीं है जो विरोध लिए हुए हो, सभी संतों के माध्यम से एक ही स्वर में एक ही बात कही गई, इसका मतलब ये बातें काल्पनिक नहीं है, ये बातें प्रामाणिक है। ये सबसे बड़ा हेतु है विषय की प्रामाणिकता के लिए। करणानुयोग से हमारी श्रद्धा मजबूत होती है, करणानुयोग श्रद्धा के आधार से स्वीकार किया जाता है और श्रद्धा के लिए भी करणानुयोग है। ये दो पॉइंट मैंने सुबह के प्रवचन में कहे थे, आप लोगों को ध्यान होंगे। यदि करणानुयोग नहीं है, स्वीकार नहीं है, तो श्रद्धा फेल हो जाती है। कैसे हो जाएगी? तो मैंने उदाहरण लेकर के बात कही कि कोई व्यक्ति बहुत पापी है और अनेक अन्याय बेईमानी के उसके काम चलते हैं, दो नंबर के काम होते हैं और फिर भी बहुत आराम से ऐशो आराम से रहता है। आप कहेंगे देखो पाप करने से कितने आराम से रहते हैं। अब क्या जवाब है आपके पास में? कैसे समझाएंगे? तो ये समझाएंगे हम भैया इसका उदय बाद में आएगा। तो बाद में उदय आएगा ये कौन कह रहा है? करणानुयोग। यदि आप करणानुयोग को नहीं मानेंगे तो धर्म के प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी। फिर तो आपको ऐसे लगेगा देखो गुरुदेव की मौत कैसे हुई, देखो टोडरमल जी को आदमी के पैर के नीचे चलवा दिया गया, देखो बनारसी दास जी क्या स्थिति थी, हाथ हिलाने की पोजीशन नहीं थी, देखो क्या होता है ज्ञानियों के, ये हालत होती है। अब देख लो तुम भी करते हो धर्म, तुम्हारा भी क्या होगा? ऐसी बात कर रहे हो आप? अरे भैया तो पाप कर्म का उदय पूर्व में किया हुआ, पता नहीं कब कितना कौन सा उदय में आ जाए, ये कोई वर्तमान में किए गए धर्म आराधना का फल नहीं है। अरे पापनाथ के जीवन में भी उत्तर देखा गया है, ऋषभदेव के जीवन में भी उत्तर देखा गया है, सुभाषनाथ आदि के जीवन में भी उपसर्ग दिखाई दिए हैं, महावीर स्वामी के जीवन में भी उपसर्ग था, 6 महीने तक भोजन नहीं मिला आदिनाथ भगवान को। ऐसा क्या किया उन्होंने बतलाओ मेरे को, ऐसी कौन सी घटनाएं किया था? कोई ना कोई पाप पहले किया था, वर्तमान में फल दिखाई दे रहा है। माने करणानुयोग जो है हमारी श्रद्धा को मजबूत करता है, किसी व्यक्ति को देख कर, किसी व्यक्ति की पाप रूप परिस्थितियां देख कर, धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलताएं देखकर तुम धर्म से विचलित मत हो जाना, क्योंकि ये प्रतिकूलताएं धर्म का फल नहीं है। और किसी पापी व्यक्ति के द्वारा अनुकूलताएं देखकर तुम पाप में लिप्त मत हो जाना, क्योंकि इसका फल उसको भविष्य में मिलेगा, ये करणानुयोग कहता है। और बिना श्रद्धा के तो करणानुयोग की बात हो नहीं सकती, क्योंकि ये बात तो केवल ज्ञान गम्य है। मैंने कुछ ऐसी बात भी कह दी थी कि अन्य अनुयोगों में माने चरणानुयोग प्रथमानुयोग में कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, तो मैं निश्चित रूप से ऐसा समझता हूँ कि लोगों के प्रश्न अवश्य इस बारे में होंगे। छिछलवाने की बात है और कैसे आप बदलने की बात करते हैं। तो अपन कोई प्रश्नोत्तरों की यहाँ चर्चा करते हैं। मेरी चर्चा का सार तो यही था, और आप मुझे और भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप लोग रख सकते हैं। बच्चियाँ यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे आ गए हैं, मैं समझता हूँ चिंतन भाई बहुत से अपने लिए नॉमिनेशन के लिए
सुबह के 9 बजे तक
सुबह तक के 9 बजे तक के लिए। हाँ सही कह रहे हैं किरण भाई, सुबह के 9 बजे का मतलब जो जवाब दिए जाएंगे उनका सुबह 9 बजे तक चिंतन भी तो करेंगे। जब तक नए प्रश्नों के लिए माल न मिले तब तक पुराने प्रश्नों के जवाब का चिंतन भी तो होना चाहिए। और सच में चिंतन ज्यादा जरूरी है, सुना तो बहुत है लेकिन अपना काम चिंतन नहीं होने से सिद्ध नहीं हुआ। अपना काम क्यों नहीं होता है? गुरुदेव को कम सुना है हमने ऐसी बात नहीं है, बहुत सुना है लेकिन सुना नहीं है बस, उसको सुन करके चिंतन नहीं किया। जो बात वे कहते हैं उस बात के बारे में विचार नहीं किया। हूँ परमात्मा छू ये पंक्ति कितने नहीं सुनी है, किसको याद नहीं है, लेकिन हूँ परमात्मा छू ऐसा अनुभव कितनों ने किया, इसका चिंतन कितने लोग करते हैं? तो चिंतन का विषय बने जो बातें सुनी है, और चिंतन के लिए समय तो चाहिए, तो 9 बजे से 9 बजे तक का समय दिया है किसी भाई ने। कई लोग कहते हैं ऐसा मुझसे, देखो ये बात ऐसी आ रही, कई लोग ऐसा कहते हैं कि साहब हमारे को टाइम नहीं मिलता, बहुत से लोग कहते हैं। तो मैं यही जवाब देता हूँ, वो कहते हैं पंडित जी फुर्सत नहीं है क्या करें, आप हमारी जगह हो तो आपको पता लगे क्या स्थिति है। सुबह 6 बजे निकलते हैं घर से और रात को 9 बजे तक का ठिकाना नहीं है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात है, आज मुझे पता लग गया कि आप सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बिजी हैं, इसका मतलब ये आप 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक फ्री हैं। यही अर्थ हुआ ना इसका भाई साहब। अरे मैंने रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय फ्री है, यही अर्थ निकला उसका। यही बात हम कहना चाहते हैं, यहाँ आकर के लोग ये कहते हैं कि साहब आप बिल्कुल अवसर ही नहीं देते हो, इतना टाइम शेड्यूल है अवसर ही नहीं है। तो किरण भाई ने कह दिया रात को 9 से सुबह 9 बजे तक आपके पास में पर्याप्त समय है, आप बहुत चिंतन करें, मंथन करें, विचार करें, जो बातें सुनी है उन सुनी हुई बातों को ऐसे जो कान आपने सामने है ना, इधर है बिल्कुल सामने, कोई बात इधर से जाती है तो बिल्कुल सामने से निकल जाए, ऐसा नहीं हो, चिंतन के माध्यम से उस बात को अपने हृदय में भी उतारे। तो ये सारी बातें तो भी अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, हाँ तो वो भी देंगे ना जवाब, इन्हीं में से दे देंगे।
नहीं आपका जवाब आप दो।
सब जगह पर परीक्षा लेता हूँ, यहाँ परीक्षक बना करके विद्यार्थी बना के बिठा दिया। गुणस्थान नो निर्णय श्रद्धा ने चारित्री तारतम्यता की थाय छे, तो समय दृष्टि त्रियंश जीवों में चारित्र कई रीते घटावश। ये प्रश्न है, प्रश्न गुजराती में है, जवाब हिंदी में देता हूँ। प्रश्न ऐसा है कि त्रियंश गति के जीवों में वो जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि त्रियंशों में वो चारित्र अपेक्षा से कैसे घटित करेंगे। देखिए मैंने जो बात कही थी ये गुणस्थान के संदर्भ में कही थी कि गुणस्थान का संबंध श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय से है, श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय से गुणस्थान सिद्ध होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरों के सम्यक दर्शन की बात करते रहे। मैंने कक्षा में भी ये बात कही थी, प्रवचन में भी ये बोला था, औरों का सम्यक दर्शन मत देखना। अब औरों का नहीं देखना तो इन्होंने मनुष्यों का तो देखा नहीं, ये त्रियंशियों की बात करते रहे। इसका मनुष्यों का तो नहीं, आप त्रियंशियों का सम्यक दर्शन बतला दो। हम नहीं बतला सकते भाई, उसको घटित नहीं किया जा सकता, उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। देखिए रही बात चारित्र के संदर्भ में, तो त्रियंशी लक्ष्मी के जीवों में तो सम्यक दर्शन की मुख्यता है। पंचम गुणस्थानवर्ती भी हैं, जो पंचम गुणस्थानवर्ती तिर्यंचे हैं उनका पंचम गुणस्थान दो कषाय चौपड़ी के अभाव जन्य है, वही चारित्र है। आप जो घटित करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो चारित्र समझिए, प्रॉब्लम तो चारित्र की वजह से हो रही है। आप कह रहे हैं जो मैं चारित्र घटित करो, मैं आपसे पूछता हूँ जिनका प्रश्न है मुझे ये बताइए आप चारित्र किसे समझ रहे हैं? आप चारित्र समझ रहे हैं देह की क्रिया को, आप चारित्र समझ रहे हैं अनुव्रतों को, आप चारित्र समझ रहे हैं महाव्रतों को, आप चारित्र समझ रहे हैं खान पीन की क्रिया को, आप चारित्र समझ रहे हैं रात्रि भोजन के त्याग को। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चारित्र है और मैं कह रहा हूँ ये सब जड़ी क्रिया है। चारित्र तो आत्मा का गुण है, इसलिए चारित्र जड़ में नहीं होता, चारित्र चेतन की पर्याय में होता है। इसलिए चारित्र अंदर में होगा। आप अंदर से यदि चारित्र को देखेंगे तो फिर आपको तिर्यंचों के संदर्भ में प्रश्न खड़ा नहीं होगा। पंचम गुणस्थानवर्ती तिर्यंच के जीवन में भी अनंतानुबंधी और अप्रत्यय अनावरण कषाय के अभाव में जो शुद्ध परिणति निरंतर वर्ती है वो चारित्र उसके जीवन में है और चारित्र की अपेक्षा से उसके पंचम गुणस्थान बनता है। और जो श्रद्धा बदल गई है वो श्रद्धा तो दूसरे का विषय हो ही नहीं सकती है। किसी की श्रद्धा को कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ सकता है क्या? फिर आप पकड़ने की बात करेंगे तो वाणी से पकड़ने की बात करेंगे, उसकी भाषा से पकड़ने की बात करेंगे, उसके आचरण से पकड़ने की बात करेंगे। मैं कहता हूँ आचरण भाषा ये सब तो जड़ की क्रियाएं हैं। इससे श्रद्धा का परिणमन और चारित्र का परिणमन, ये दोनों परिणमन आत्मा में होते हैं, ये दोनों परिणमन हमारे पकड़ने से पकड़ने नहीं आते। ठीक है, ऐसी बात है। ये प्रश्न था ऐसा चेतन भाई दूसरा प्रश्न। हाँ मैं ही चलने दू, अच्छी बात है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे प्रश्न है, राग उद्गम का है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। ये कहा था मैंने दिन में, केवल प्रयोजनवश ऐसा कह दिया गया है। इसमें निमित्त निमित्त हुए उपादान स्पष्ट कीजिए, क्या निश्चय से राग उद्गल का नहीं है? वास्तव में ऐसा ही मैंने जो कहा था वो बराबर कहा था और फिर कह रहा हूँ राग उद्गल का नहीं है, यह वस्तु स्थिति नहीं है। और आपने ही आगे लिखा है इसमें प्रयोजनवश किया गया कह दिया गया है, तो सही है ना? प्रयोजनवश कह दिया गया है तो प्रयोजन ही तो सिद्ध करना है अपने को। यदि राग को प्रयोजनवश उद्गल का कह दिया गया है तो आपको क्या करना है? हमें तो प्रयोजन सिद्ध करना है। क्या प्रयोजन सिद्ध करना है? कि राग से अतीत जो त्रैकालीन भीतराग अपना स्वभाव है उसे दृष्टि में लेना है। और राग को जब तक तू अपना मानता रहेगा तब तक तू राग से भिन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए राग को राग उद्गल के खाते में, कुछ नहीं है राग, कुछ नहीं होता है, राग उद्गल का है। उद्गल का कहने के पीछे भी कारण ये है कि राग उद्गल के अवलंबन से उत्पन्न होता है, राग पर के अवलंबन से उत्पन्न होता है। ये राग रूपी विकार उत्पन्न तो आत्मा में होते हैं, ये राग रूपी विकार है तो आत्मा की पर्याय है, तो जीव के चारित्र गुण की विकारी पर्याय, लेकिन उत्पन्न कैसे हुई है? आत्मा में या चारित्र गुण में उत्पन्न होते हुए भी पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई है, पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न हुई है। तो जो जिसका लक्ष्य करे वो उसका, ये फार्मूला लगाया हमने, जो जिसका अवलंबन ले ले वो उसका। पुत्री किसकी है? ये पिताजी। पुत्री का स्वामी कौन? पिता। क्यों? पति क्यों? वो जिसमें अपनापन करे वो उसका स्वामी। तो राग के अपनेपन की दिशा कहाँ है? कि राग के अपनेपन की दिशा पुद्गल है, तो राग का स्वामी कौन? कि पुद्गल। तो ऐसा कहकर के अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो, सम्यक दर्शन प्रकट हो, शुद्ध आत्मा की खबर हो, सिद्ध प्रमाण शुद्ध आत्मा की खबर हो, ऐसे प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर अध्यात्म में द्रव्यानुयोग की शुद्ध शैली में उस राग को पुद्गल का कहा जाता है। ये बात मैंने दिन में भी सिद्ध की थी कि राग पुद्गल का है, इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि माइक में राग है, टेबल में राग है, पुद्गलों में राग नहीं होता। इसलिए वस्तु स्थिति माने द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है ना, वस्तु किसका नाम? द्रव्य गुण पर्याय, इनसे मिलकर के परिपूर्ण वस्तु है। तो राग चेतन की पर्याय में है, इसलिए आत्म वस्तु में ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन अपने में उत्पन्न होते हुए भी अपनापन करने लायक जैसा नहीं, नालायक जैसा है बेटा, निकाल देने योग्य है। अपने में हुआ है लेकिन अपनाने योग्य नहीं है, अपने में पैदा हुआ है लेकिन रखने योग्य नहीं है, बनाए रखने योग्य नहीं है, निकाल देने योग्य है। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना मत मानो, पराया मानो तो निकाल पाओगे। इसलिए उसको मंडल का कहा गया है। मैं समझता हूँ स्पष्ट हुई होगी, थोड़ा सा क्या भाई साहब लंबा लंबा समझाने के लिए कहा है। नहीं, टाइम 9 बजे तक का है, इसलिए मैं इस बात को 2 मिनट में 2 वाक्य में भी कह सकता था, लेकिन मैंने उसको लंबा कर दिया। चलिए, आप तो प्रश्न ही बहुत लंबे हैं।
भी समझ में आ जाए तो धन्यवाद।
हाँ भाई साहब तो रोज ही समझाते हैं ऐसी बात। यहाँ देखिए, बहुत सारे प्रश्न है इनके। पहला प्रश्न है इसमें, ढाई द्वीप के बाहर मात्र भूमि के जीव ही होते हैं, जैसा आपके प्रवचन में सुना है, आज में नहीं पहले कभी सुना होगा, तो फिर 56 कुमारियां कहाँ रहती हैं? 11 या 13वें द्वीप में रहती हैं जैसा सुना है, तो वहाँ तो देवगति के जीव सिद्ध हुए, तो कैसे समझना? ये समझ तो सकते तो है आप कि वहाँ 56 कुमारियां भी रहती हैं, त्रियंश गति के जीव भी रहते हैं। भाई बात तो ऐसी है कि वहाँ ढाई द्वीप के बाहर भोग भूमिया हैं, और वहाँ भोग भूमियों में भोग भूमि के त्रियंश रहते हैं, ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं रहते, और देवगति के जीव तो स्वतंत्र हैं। आप क्या सोचते हैं ढाई द्वीप के बाहर नहीं रह सकती 56 कुमारियां और देव वगैरह? भाई साहब, यहाँ अपने बीच में भी अभी कई देव लोग आकर के सुन रहे हैं, डरना भी कोई सामने आ जाए तो आते हैं एक तरह से। व्यंतरवादी देव, भवनवादी देव, ये सब तो कहीं भी जा सकते हैं, और जैसे आपने तो जाहिरात की ना ऐसी खुले में सब लोगों के लिए कि सब आओ यहाँ शिविर में, तो उनके पास भी खबर पहुंची कि भैया यहाँ देवदानी में शिविर लग रहा है, यहाँ भी आ सकते हैं सुनने के लिए, दिखते नहीं है। ढाई द्वीप के बाहर तो उनके निवास स्थान भी है, पूरे मध्य लोक में ज्योतिष देव हैं फैले पसरे हुए, व्यंतरवादी देवों के स्थान हैं जगह जगह पर। ये जो देवियां वगैरह कही है, 56 कुमारियां वगैरह, ये सब भी ढाई द्वीप के बाहर मानसोत्तर पर्वत के ऊपर भी है, समझ लीजिए आप कुंडलवर द्वीप में भी है, रुचकवर द्वीप में भी है, वहाँ इनके कूट बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, पद्म महापद्म से नीचे केसरी आदि जो सरोवर है, उन सरोवरों पर भी ये देवियां निवास करती है। ये तो व्यंतरवासी है मुख्य रूप से, तो इसलिए कोई बाधा नहीं है देवों के रहने में। तो
हमारे कहांतरी होती
है? हाँ, व्यंतरवासियों की, भवनवासियों की भी है, ये सब अलग अलग है, बहुत तरह से उल्लेख है इन सब बातों के। भवनवासियों के मुख्य स्थान तो 7 करोड़ 72 लाख कहे हैं जो अधूर रूप में कहे हैं, क्या फर्क पड़ गया उसमें? किसी भी जाति के हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। देखो आगे
बड़ी सज्जन होती है, माता की सेवा करती है,
तो व्यंतर सब दुष्टी दिखते हैं। व्यंतर नाम पता नहीं क्यों इतना बदनाम हो गया है, ये सबको ऐसा लगता है व्यंतर माने कोई गाली दे दी गई। व्यंतर भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, व्यंतरों में भक्ति की प्रधानता भी होती है, व्यंतरों में कौतूहल की प्रधानता भी होती है, दो तरह के व्यंतर होते हैं। 8 भेद है व्यंतरों के, किन्नर, चिमपुरुष, मवरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये 8 भेद है। 8 में से 4 प्रकार के व्यंतरों में भक्ति की प्रधानता होती है, और 4 प्रकार के व्यंतरों में कौतूहल की प्रधानता होती है। यहाँ भी जगत में कुछ कौतूहल जैसा देखा जाता है, वो यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, इन 4 प्रकार के व्यंतरों का कार्य है। और जहाँ जहाँ आप तीर्थ क्षेत्रों पर ऐसे कुछ चमत्कारिक घटनाएं देखते पढ़ते सुनते हैं, वहाँ वहाँ किन्नर, किंपुरुष, मौरक और गंधर्व, इन 4 प्रकार के व्यंतरवासी देवों का कार्य भी हो सकता है। बहुत जगह पर तो झूठ भी होता है, लेकिन जहां होता है वहां ये व्यंतरों के कार्य देखे जाते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। किरण भाई इतना इतना लंबा जो कर रहा हूँ वो ठीक है ना? वैसे तो मैं इतना लंबा नहीं कर सकता हूँ कि 9 एक ही प्रश्न में बजा दूं।
आप प्रमाण दृष्टि से लियो तो सब प्रश्न हो जाएंगे।
हाँ बस ऐसा। चलिए आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने प्रवचन में सुना है कि सीता का जीव रावण को संबोधन करने नरक में गया था, तो क्या यह बात सही है?
उनको भरोसा ही नहीं।
देखो आप ये पता है प्रश्न किसका है और कुछ किससे रहे हैं? सब समझदार लोग हैं। अच्छा हुआ मैं लास्ट में आया। ये प्रश्न जिनका था, जिनकी चर्चा में चला होगा, वो तो चले गए क्या? और आप प्रश्न इतनी निशंकता से पूछ रही है, ये शंका है उस वक्ता के ऊपर कि आपने जो ये बात कही है क्या ये बात सही है? इससे मुझे आप लोगों की ये वृत्ति समझ में आ रही है कि मेरे जाने के बाद आप अन्य विद्वानों से कंफर्म करेंगे कि क्या ये सही है। सही है ये बात बिल्कुल, है ना? और ये प्रथमान युग की शैली है वास्तव में तो, और गहराई से यदि मैं बात करूँ सच में तो ये बात सही नहीं है। घबराना नहीं, क्योंकि ये कर्णानुयोग की दृष्टि से ये प्रैक्टिकल स्थिति बनती नहीं है कि 16वें स्वर्ग का जीव वहाँ उस नरक तक जा सके, है ना? तो ये कर्णानुयोग के हिसाब से ठीक नहीं है बात, लेकिन जगत प्रसिद्ध है और प्रथमानुयोग की शैली है इस तरह की बात कहने की, और ऐसी शैली प्रथमानुयोग की इसलिए भी है बुरी आदतों से बचाना है, और जितने आपके साथ में बुरा किया हो उसके साथ भी आपका सदव्यवहार बना रहे, शायद इस तरह की शिक्षा देने के लिए इस तरह के प्रसंग प्रथमानुयोग में मिलते हैं।
प्रथमानुयोग में पद्म पुराण में तो यहाँ तक आता है कि सीता के जीव ने रावण को बाहर ले चलने के लिए उठाने की कोशिश की कि चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ, लेकिन जैसे ही वहाँ की नेचर है, स्वभाव है, तो वो शरीर पारे जैसा टुकड़े टुकड़े हो गया वो उठाने। तो रावण ने कहा कि हमने जो पाप किए हैं वो हम यही भोगेंगे, आप यहाँ आए समझाने के लिए धन्यवाद, अब आप पधारो।
ये प्रथम योगी जैसी है ना, यही कह रहा हूँ। ऐसा का ऐसा ही प्रश्न रतनलाल के मुख्तार एक बहुत अच्छे विशिष्ट विद्वान हुए हैं अपने दिगंबर जैन परंपरा में, उनका अभिनंदन ग्रंथ है, और उनके अभिनंदन ग्रंथ में उनके द्वारा दिए गए शंका समाधान उसने विषय वाइज भी बांटा है। वैसा प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग इस तरह से विषय वाइज भी बांटा है, और आगम सम्मत मतलब धवलादि के रेफरेंस देकर के, प्रमाण देकर के उन सबकी बहुत तर्क संगत मीमांसा की है। वहाँ इसी तरह का प्रश्न उठाया है, जो प्रश्न ये उठा है, शायद हो सकता है प्रश्नकर्ता को इस बात की खबर हो इसलिए इस तरह के प्रश्न पूछा गया है, और हो सकता है मेरी परीक्षा लेने के लिए पूछा गया कि इनको पता है या नहीं है, हमें तो पता है, मैं पास हो गया। तो उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है, वहाँ जवाब भी दिया कि जो उनका गमन क्षेत्र जो कहा है उस क्षेत्र की अपेक्षा से वहाँ तीसरे नरक तक पहुँचना ये संभव नहीं है, इसलिए ऐसी बात नहीं बनती है। चलिए देखिए शैलीगत बहुत भेद है इस तरह के प्रथमानुयोग शैली के। आगे प्रश्न है, तेजस शरीर कांति देने का काम करता है, तो फिर विग्रह सती में तेजस शरीर का क्या काम हुआ? वहाँ औदारी शरीर तो नहीं होता है, काम कुछ नहीं है, बस अनादि संबंधे तत्वा सूत्र के दूसरे अध्याय में ऐसा सूत्र दिया है, तेजस और कारमान इन दोनों शरीरों का अनादि से संबंध है, विग्रह गति में भी उसका सद्भाव मात्र है, काम तो कारमान का भी कुछ नहीं दिखता है, है ना? काम क्या दिख रहा है? बस मौजूद ही की बात है, और वो भी विग्रह गति का काल कितना है? एकम दो तीन अनाहार है, एक दो तीन समय मात्र के लिए अनाहार रहता है, इतने से समय की बात है। फिर प्रश्न है, आज आपने कर्णानुयोग की इतनी महिमा गाई है, परंतु गुणस्थान, मार्गणा स्थान, संयम स्थान, लब्धि स्थान, इत्यादि क्या लिखा है भाई साहब 29 भूल
29 भूल सलीको
अद्रोह सभी को अद्रोह परिणाम कहा है। और दूसरी बात यह है कि स्वभाव के आश्रय बिना गुण स्थान की प्राप्ति नहीं होती, तो क्या समझना?
ऐसा ही समझना जैसा लिखा है स्वभाव के आश्रय बिना गुण स्थान नहीं बढ़ते, सच्ची बात है। इसीलिए तो मैंने कहा कि गुण स्थानों में दिमाग नहीं लगाना बिना बुद्धि वालों के लिए, आप तो स्वभाव का आश्रय लो गुण स्थान अपने आप बढ़ेंगे। जिनके गुणस्थान बढ़ते हैं उनके गुणस्थान गुणस्थानों को पढ़ लेते नहीं बढ़ते। या तो मैंने गुणस्थान पढ़ लिया आपको मेरा चौथा गुणस्थान हो ही जाएगा, ऐसा नहीं। गुणस्थानातीत ज्ञाय भगवान आत्मा को देखने से गुणस्थान बढ़ते हैं। हमारा ज्ञाय भगवान आत्मा तो सच में गुणस्थानातीत ही है, ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, ऐसा कह करके कुंद कुंद स्वामी ने गुणस्थानातीत भगवान आत्मा की ही बात कही है। तो फिर गुणस्थान पढ़ने की इतनी बात क्यों कर रहे थे दिन में, कि इसलिए कर रहे थे कि विषय मेरा करना नहीं होंगे मैं नहीं करूंगा ये बात, तो चेतन भाई थोड़ी ना करेंगे, अमेर जी भाई साहब ने भी नहीं की होगी।
हमें तो ये कही दी है संजीव जी आएंगे वो कहेंगे
चलिए तो ये हो गए बहुत सारे प्रश्न, मैं चेतन भाई को देता हूँ कुछ प्रश्नों का जवाब।
प्रश्न है द्रव्यान योग में करणान योग की स्थिति कैसे होती है? द्रव्यान योग है उसमें भी जो अपन ने सवेरे जो चर्चा की थी कई उपादान कई शुद्ध उपादान और कई अशुद्ध उपादान, तो वो पर्याय का जो उपादान होता है उसको नियमित नियमित संबंध भी रहता है, खाली एकांत उपादान संबंधी कई वाला नहीं है। वही पर्याय में राजभेद मोह भाव होता है तो बाह्य में कर्म का उदय निमित्त होता है, और यहाँ ऐसा भाव हो गए और बाहर में ऐसा निमित्त नहीं हो गए ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए वो निमित्त निमित्त संबंध से द्रव्यान योग और करणान योग जुड़ा हुआ है, वो दोनों साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि करणान योग कुछ अलग चीज है द्रव्यान योग कुछ अलग चीज है, ये तो दोनों अनुयोग अलग अलग, मगर निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय में उसका चलता है।
एक और बात कह दूं मैं इसी संदर्भ में, मैं ये कह रहा हूँ कि द्रव्यानुयोग में करणानुयोग क्यों सिद्ध कराना चाहते हैं आप, ये उल्टी गंगा मतवाई है। करणानुयोग के प्रकरण में से द्रव्यानुयोग निकालिए तो प्रयोजन सिद्ध होगा। द्रव्यानुयोग पढ़ते समय उसमें करणानुयोग की तरफ घूमेंगे तो गाड़ी रिवर्स में जाएगी, ऐसा नहीं हो।
आज का प्रवचन में गुरुदेव ने जवाब दिया जब श्रोता ने कहा कि समय दर्शन की विधि क्या है, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि समय तत्व की विधि ये आत्मा का अकर्तापना अपरिणामी वो मैं हूँ वो विधि संक्षिप्त में समझाएंगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सबसे पहले में पहले तो यथार्थ निर्णय की आवश्यकता होती है। जब तक यथार्थ निर्णय ज्ञान में नहीं आता है तब तक श्रद्धा की पर्याय नायक में अपरिणामी ऐसा अहम नहीं कर सकते। निर्णय में ये मार्ग में निर्णय की बहुत कीमत है, और वो निर्णय द्रव्य और पर्याय का सबसे पहले दोनों का होगा कि पर्याय का क्या स्वभाव है और द्रव्य का क्या स्वरूप है, द्रव्य का क्या स्वभाव है, वो सबसे पहले ये दोनों का निर्णय ज्ञान में आता है। माने कि द्रव्य और पर्याय दोनों मिला के जो प्रमाण ज्ञान का विषय है उसका निर्णय सबसे पहले ज्ञान में आता है, और वो ज्ञान में जब द्रव्य पर्याय का यथार्थ निर्णय की भूमिका जब जीव को आती है कि पर्याय में परिणाम कैसे हो रहा है, पर्याय का विभाव कैसे चल रहा है, पर्याय स्वभाव रूप कैसे परिणाम की है, उसमें आश्रय तत्व कौन है, सीताली द्रव्य कौन है, उसके आश्रय से कैसे पर्याय परिणाम की है, उसको अहम कहाँ होता है, और राग में अहम होता है तो मिथ्या होता है, नायक में अहम होता है तो समय प्रसन्न होता है, ये सब पहले निर्णय ज्ञानी पुरुषों की शास्त्र से और उसकी वाणी के आधार से पहले ज्ञान ने अपने उपादान से यथार्थ निर्णय की भूमिका जीती आती है। जब तक ये यथार्थ भूमिका निर्णयात्मक भूमिका नहीं आती तब तक मैं नायक हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये सब विकल्पात्मक भूमिका में चलता है, सचमुच में अहम नहीं होता है। जब निर्णय वास्तविक हो जाता है और यथार्थ निर्णय बहुत टाइम तक भी चलता है, ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो तुरंत समय कल्पन हो जाता है, मगर वो निर्णय जैसे 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 जड़ दृढ़तम होता है और श्रद्धा को अपना विषय मिल जाता है तो श्रद्धा में नायक हूँ ऐसा अपरिणामी तत्व हूँ ऐसा अहम कर लेती है। और जब जब ये निर्णय की भूमिका चलती है तो वह निर्णय आगे चलता होता है तब श्रद्धा में मिथ्या को ही गलती है, मिथ्या को गलना शुरू हो जाता है, बाद में वो मिथ्या को गलता है, मगर जिसको निर्णय आता है वो श्रद्धा में कितना मिथ्या को गल गया और कब करेगा ऐसा नहीं सोचता है। यदि सोच अगर उसकी चलती है तो निर्णय नायक तरफ वाला निर्णय नहीं होगा, इसलिए उसका निर्णय में नायक परमात्मा पहले द्रव्य पर्याय का निर्णय होता है, बाद में नायक की तरफ उसका निर्णय का झुकाव चलता है, वो झुकाव चलते चलते श्रद्धा को अपना विषय मिलता है तो श्रद्धा में परिपूर्ण यही हूँ ऐसा अहम करके समय दर्शन की प्राप्ति होती है। समय दर्शन की ऐसी विधि है, गुरुदेव किस तरीके से ही बताते रहते हैं ऐसा ही बताना चाहते हैं। आज तो ये बात जैसे प्रवचन में तो नहीं आई थी, अच्छा आज का प्रवचन में आया था भव्य प्रशक्ति की व्यक्ति होती है, उसके फल में समय दर्शन आदि प्रकट हुआ, केवल ज्ञान हुआ। समय दर्शन तो श्रद्धा की पर्याय है तो केवल ज्ञान तो ज्ञान गुण की पर्याय है, तो शक्ति की व्यक्ति उसकी पर्याय में है कि दूसरे गुण की पर्याय में होती है। देखो ये भव्यत्व जो है ना वो भव्यत्व कोई गुण नहीं है, भव्यत्व जो है वो पर्याय में एक भव्यत्व शक्ति है, वो शक्ति की व्यक्ति चतुर्गुणता में हुई तो सभी दर्शन की प्राप्ति होती है, और वो भव्यत्व शक्ति की पूर्णता हो गई तो केवल ज्ञान होता है, तो योग्यता वहाँ उसकी पूरी हो जाती है। भव्यत्व शक्ति नाम का कोई गुण नहीं है, अगर गुण होता तो वो अनादि अनंत रहेगा, मगर वो गुण नहीं है उसको पर्याय अपेक्षित धर्म यानी योग्यता बोला जाता है। तो योग्यता भव्यत्व शक्ति की, जो भव्यत्व बड़ा पूरा हो गया तो भव्यत्व शक्ति की प्रगटता हो जाती है, उसको ऐसा बोला जाता है कि भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति हो गई। एक गुण में अनंत गुण का रूप है, अस्तित्व गुण में सर्वगुण का रूप कैसे है, गुरुदेव उसका ऊपर बहुत विचार करते थे, कृपया समझाइए। अभी मुझे गुरुदेव जैसे पुरुष भी ऐसे बोल रहे हैं कि ज्ञान में तो अस्तित्व का रूप मालूम पड़ता है, मगर अस्तित्व में ज्ञान का रूप कैसा है उसका विचार हमें भी बहुत चलता है, तो उसके लिए उसका स्पष्टीकरण अपन तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें गुरुदेव ने जो कहा है उस तरीके से अपने को समझ लेना। द्रव्यान युग की निद्राता की प्राप्ति यह विषय है, तो यह आप ज्ञान प्रधान और कृषि प्रधान ग्रंथ को समन्वय करके दोनों में से निद्राता कैसे निकले, जब दोनों में कथन विरोधाभास लगते हैं, क्या खाली 320 गाथा पर ही विकराता की प्राप्ति कराने वाले हो। अभी देखो
खाली तुम्हारे
ऐसा है कि दान प्रदान से ही और दृष्टि प्रदान से ही ऐसा जो बोला जाता है, श्रद्धा की मुख्यता से बात करती है तो उसको दृष्टि प्रदान से ही बोली जाती है, और ज्ञान की मुख्यता से बात करे तो ज्ञान प्रदान से ही बोली जाती है। श्रद्धा और ज्ञान दोनों गुण आत्मा में ही गुण है, तो उसका समन्वय की जो बात यहाँ आई है तो अभी वो समन्वय का प्रकरण 320 गाथा में शुरू नहीं हुआ है। अभी यहाँ जो विषय चलता है वो दृष्टि का विषय बताने के लिए ही अभी ये एक दो पैराग्राफ में बात चले, क्योंकि यहाँ सर्वथा तीन पर्याय से रहित वाली दृष्टि का विषय बताने वाली 320 गाथा में चर्चा करी है, और बाद में जो प्रकरण आएगा सर्व विद्युत पारिणामी भाव परम परम ग्राहक परम भाव ग्राहक नहीं दे वहाँ कथन की भिन्नता स्वरूप आएगा, तब मोक्ष मार्ग का प्रकरण शुरू होगा। तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण शुरू होगा तब वहाँ ज्ञान का कथन की भिन्न अभिपना कैसे है और श्रद्धा का अहम कैसे द्रव्य में होता है वो तो दोनों बात साथ में चलेगी। ये आचार्य भगवान जब गाथा लिखते हैं ना तो उसको ऐसा कोई क्रम नहीं होता है कि दृष्टि की बात पहले लिखे ज्ञान की बात बाद में लिखे, मगर स्वरूप ऐसा है कि दृष्टि पूर्वक ज्ञान होता है, इसलिए दृष्टि की बात पहले आती है और दृष्टि पूर्वक यानी कि दृष्टि के साथ में ही सबसे ज्ञान होता है। तो प्रकरण जैसा जब चले उस तरीके से बात आती है। आप मेरे को बोलो कि ज्ञान प्रदान शैली से कथन करो तो मैं कल 181 गाथा ले लूंगा। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में गोला भी नहीं है, वो गाथा ज्ञान प्रदान से चलती है। और ये दृष्टिता विषय की 320 गाथा है वो त्रिकाली द्रव्य क्या है, त्रिकाली द्रव्य में पर्याय है कि नहीं, उत्पाद ये है कि नहीं, ऐसा जो बंधु मोक्ष से रहित जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है वो कैसा है, उसका जानना देखना स्वभाव उसका कैसा है, वो चर्चा यहाँ दृष्टि के विषय की चलती है। कोई ऐसा नहीं होता है कि 320 गाथा से ही विकरागता की प्राप्ति हो गए, 320 गाथा से जरूर विकरागता की प्राप्ति होती है, मगर वही गाथा से प्राप्ति हो गए और दूसरी गाथा से नहीं हो गए ऐसा नहीं होता है। आश्रव अधिकार की गाथा से भी सव्य दर्शन की प्राप्ति और विकरागता की प्राप्ति हो सकती है। आश्रव भाव में नहीं हूँ और त्रिकाली द्रव्य भाव में हूँ तो समझ की प्रगटता हो जाती है। इसलिए पहले भी सवेरे मैंने बोला था कि कोई अनुयोग की कोई गाथा अप्रयोजन भूत नहीं होती है, सब गाथाएं आचार्य भगवान के अंदर प्रचुर स्व संवेदन से निकली हुई गुण भूत है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि ये गाथा से ही प्रयोजन की स्थिति हो और ये गाथा से नहीं हो, इसलिए ऐसा कोई कोई मत समझना कि 320 गाथा से ही स्थिति होती है। आचार्य भगवान का कोई भी ग्रंथ से कोई भी गाथा से प्रयोजन की स्थिति हो सकती है। दो घड़ी की धारा कैसे होए उसका खुलासा करना, तो मतलब क्या है पूछना क्या चाहते हैं, दो घड़ी की धारा माने
वो दो घड़ी में सम्यक दर्शन हो जाए ऐसा कुछ, ऐसी कोई धारा बताओ।
वो तो दो घड़ी में सम्यक दर्शन हो जाए ये तो बात ठीक है, मगर उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि दो घड़ी में सम्यक दर्शन हो गए, वो तो एक समय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। पूर्व पर्याय में विद्यात्मक है वो विद्यात्म का व्यय होता है और सम्यक दर्शन का उत्पाद होता है, तो व्यय पूर्वक उत्पाद बोला जाता है, उसमें व्यय की सचमुच कारण नहीं है, सचमुच में तो अपनी पर्यायगत तत्समय की योग्यता ही कारण कार्य बनती है, ऐसा सम्यक दर्शन का विषय है। और इसमें दो घड़ी का आचार्य भगवान ने तो वैसे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय भी चौकी से गर्भ दिया है कि तू निरंतर यथार्थ निर्णय पूर्वक पुरुषार्थ करेगा तो 6 महीने में तुझे प्राप्ति तो आत्मा की हो ही सकती है, मगर उसने निर्णय यथार्थ हो गए तो ये समय बराबर लगता है, अगर निर्णय वाली भूमिका नहीं आती है तो बहुत काल भी निकल जाता है। इसलिए जीव को सम्यक दर्शन प्राप्ति से पहले जो सम्यक दर्शन प्रकट होने के लिए त्रिकाली द्रव्य का और उसकी परिणाम रूप पर्याय का निर्णय की भूमिका कैसे आए उस पर वचन देना चाहिए और निर्णय सचमुच में करना चाहिए। अपन लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई लोग 8 घंटा भी स्वाध्याय करता है, कोई 4 घंटा करता है, कोई 2 घंटा भी करता है, कोई पढ़ता ही है, कोई सुनता ही है। मगर अभी संजीव जी ने बोला था कि कोई चिंतन और विचार नहीं करता है, माने कि निर्णय की भूमिका तक जीव नहीं पहुंचता है। अभी जब तक ऐसे ही धारणा में जब चलता रहता है, मगर नाम में निर्णय यथार्थ नहीं होता, तब तक ये सुनना और पढ़ना एक सुख भाव का बंधन है, उसमें जीव आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए जब तक यथार्थ निर्णय की भूमिका नहीं आती, तब तक उसकी कार्य की संपन्नता नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले में पहले यथार्थ निर्णय जीव का होना चाहिए और यथार्थ निर्णय से आगे बढ़ के ही सभ्य दर्शन की प्राप्ति का काल पकता है। निश्चय सुपर प्रकाशक और व्यवहार सुपर प्रकाशक का स्पष्टीकरण करें। ये नियम था कि 159 गाथा जो सदुपयोग अधिकार की सबसे पहली गाथा है, उसमें ये निश्चय स्वपर प्रकाशक और व्यवहार स्वपर प्रकाशक की परिभाषा आचार्य भगवान ने दी है और गुरुदेव ने उसका स्पष्टीकरण भी वो गाथा के प्रवचन में किया है। निश्चय स्वपर प्रकाशक किसको बोलते हैं? ये स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का स्वतः सिद्ध स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक कोई पर के कारण पर प्रकाशक नहीं है और स्व के कारण स्व प्रकाशक नहीं है। स्वपर प्रकाशक अपनी ज्ञान की पर्याय का स्वतंत्र स्वभाव है और वो स्वपर प्रकाशक से जब ज्ञान का स्व की तरफ लक्ष्य चला जाता है तो उसका उपयोग बंधन रूप नहीं है, तो उसका उपयोग स्व की तरफ जाता है, स्व को जानता देखता है, तो निश्चय से वो स्व को जानता है तो उसको स्वपर प्रकाशक निश्चय प्रकट उसी समय होता है, उसको निश्चय स्वपर प्रकाशक बोला जाता है। वो निश्चय स्वपर प्रकाशक ने स्व जाने नाम में अपने आत्मा को जानना, उसको बोला जाता है स्व प्रकाशक। और निर्विकल सत्ता के काल में उसको आनंद की प्रकटता होती है, तो आनंद का भी ज्ञान उसी समय उसको बढ़ता है, उसको बोला जाता है निश्चय से स्वपर प्रकाशक स्वभाव। और निर्विकल सदा असंख्य समय चलने के बाद में जब वो उसका उपयोग छूट होता है तो वो उपयोग में जानना उसका जितना अस्थिरता रूप लाल चलता है उसका जानना भी उसमें चलता है, तो उसको उस समय उसकी परिणति प्रतिनिधि रूप अंदर चलती रहती है और उसका उपयोग में राधा जी भाव का ज्ञान बढ़ता है, तो उसको व्यवहार स्वपर प्रकाशक बोला जाता है। ऐसा निश्चय स्वपर प्रकाशक और व्यवहार स्वपर प्रकाशक का स्वरूप 159 गाथा में कुछ गुरुदेव जी ने बहुत स्पष्ट किया है। आप सब लोग सुनना, उसके 3-4 प्रवचन है, उसमें केवल ज्ञान में स्वपर प्रकाशक, स्वयं ज्ञान में स्वपर प्रकाशक, माने सब प्रकार के स्वपर प्रकाशक गुरुदेव ने दिए है। अज्ञानी का स्वपर प्रकाशक, ज्ञानी का स्वपर प्रकाशक, केवली का स्वपर प्रकाशक, ये तीनों चीज उसमें मुझे गुरुदेव जी ने स्पष्टीकरण किया है। आप उस प्रवचन को जरूर सुनना तो स्वपर प्रकाशक की भ्रमणाएं जो चलती है वो निकल जाएगी। स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है, वो स्वभाव कभी छूटता नहीं है, चाहे उसका उपयोग स्व तरफ हो चाहे उसका उपयोग पर तरफ हो, स्वपर प्रकाशक स्वभाव कभी छूटता नहीं, जो छूटता नहीं है उसी को ही स्वभाव बोला जाता है, इसलिए वो कभी छूटता नहीं। ये प्रतिभा है वो एक तरफ से देखे तो मर्यादित है, एक समय की स्वच्छता में है और मेरा ज्ञान स्वभाव बेहद है, यह विषय पर थोड़ा ज्यादा समझाने की विनंती है।
थोड़ा ज्यादा
थोड़ा गुजराती का हिंदी बोलता हूँ इसलिए बजाय समझावा विनंती से प्रतिभा पर स्वभाव, ज्ञान पर स्वभाव। देखो ये प्रतिभा शब्द जो आता है ना शास्त्रों में बहुत आया है, प्रतिभा शब्द अभी प्रतिमान का वाक्य है ना, वो बहुत तरीके से होता है। जैसे अज्ञानी का अज्ञान बना है तो ऐसा भी बोलने में आता है कि ये जीव अज्ञान रूप परिणाम का है, ऐसा उसको प्रतिभा हो रहा है। फिर दर्पण का दृष्टांत से ऐसा उसका उपाय की पहली गाथा में ही आता है कि दर्पण में प्रतिभाषित पर पदार्थ होते थे, ये भी बात आती है। प्रतिभा का और अर्थ होता है प्रतिभा माने ज्ञान। ये जीव को ऐसा ज्ञान हो रहा है कि मैं शरीर रूप हो गया, वो अपना। ये जीव को ऐसा प्रतिभा हो रहा है कि मैं आत्मा नहीं हूं, तो वो ज्ञान रूप है। ऐसा भी प्रतिभा का वाक्य है। मुख्य तरीके से प्रतिभा की बात जो आती है तो उसमें वो अवभाषण की चर्चा, झलक की चर्चा, वो कहीं कल्पों में भी अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी है। तो वो समझता के बस 215-16 कलश में भी ये चीज आई है प्रतिभा नाम वाली। दूसरी गाथा में भी श्री गुरुदेव जी ने प्रतिभा का अर्थ किया है। तो मेरी बात ये है कि ज्ञान की अपनी खुद की एक स्वच्छता, ज्ञान का स्वच्छता वो स्वभाव है। तो वो स्वच्छता है, वो स्वच्छता में बाहर में कितने भी ज्ञेय हो तो ज्ञेय उसमें अपना ज्ञेय को प्रदर्शित करते रहते हैं। और ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञान को देखने से पता चलता है कि ये ज्ञेय झलक रहे हैं और ये ज्ञेय ज्ञान में नहीं आए हैं, मगर ये ज्ञेय झलक रहे हैं। या तो मैं ज्ञान को जानता हूं तो मुझे पता चलता है कि बाहर में ऐसे ज्ञेय उपलब्ध है। वो प्रतिभा की परिभाषा इस तरीके से एक ज्ञान में दूसरे पदार्थ का जानना या दूसरे पदार्थ का अवभाषण झलकना कैसे होता है, उसके लिए ज्यादा प्रतिभा का शब्द का उपयोग कहा किया जाता है। मूल बात समझने की ये है कि प्रतिभा किसका भी ज्ञान में हो मगर वो सचमुच में ज्ञान की स्वच्छता को प्रदर्शित करता है। ज्ञेय भी ज्ञान की स्वच्छता को प्रदर्शित करता है, इसलिए ज्ञेय से भी ज्ञान तरफ जा सकता है। ज्ञेय कहाँ है, ये ज्ञेय नहीं है, ये तो ज्ञान की स्वच्छता मुझे दिख रही है। तो ज्ञान की स्वच्छता में भी आ जाए तो उसको ज्ञान ही दिखने लगता है। तो प्रतिभा का वाच्य सचमुच में तो ज्ञान है, वो ज्ञान वही प्रतिभा बोला जाता है। श्री गुरुदेव जी ने दूसरी गाथा में नाम एकाकार अनेकाकार होने पर भी एकाकार है, वो जो दास बोल से सिद्धि की है दूसरी गाथा में, उसने ये बोल में श्री गुरुदेव जी ने ऐसा घटाया है कि ज्ञान में जो अनेकाकार प्रतिभाषित होता है वो तो सचमुच में व्यवहार है, ज्ञान में जानना चलता है। तो ज्ञान का स्वभाव जानना है, प्रतिभा है वो ज्ञेय की तरफ से बात है और ज्ञान है वो अपने ज्ञान की तरफ से बात है। तो ज्ञान का स्वभाव जानना है, वहां जाने के लिए ये प्रतिभा की चर्चा है शास्त्रों में आदि है। तो प्रतिभा है उसका मतलब ये है कि कोई चीज को ऐसे ज्ञान लक्ष्य करके एकांत से जाने, जैसे गुरुदेव के प्रवचन में कल आया ना कि ज्ञान एकांत से पर को लक्ष्य करके जाने उसका नाम विद्याना है, ऐसा मुझे गुरुदेव जी के प्रवचन में कल आया था, उसकी चर्चा भी रात को हुई थी। तो वो उसमें कहना ये है कि वो एकांत से पर को जानने के लिए जब जीव जाता है तो उसको को वो छोड़ देता है। सचमुच में तो ज्ञान में उसको जानने में आ रहा है मगर उसका उसको विश्वास नहीं है और पर की सम्मुखता उसकी है तो इसलिए उसको विद्याना बोला जाता है। मगर उसमें ऐसा एक प्रकरण सोचे हो कि ये पर को मैं जानने के लिए मेरा ज्ञान उधर चला जाता है ऐसा सोच रहा हूँ, मगर सचमुच में तो पर तरफ मेरा ज्ञान उधर जाता नहीं है, मेरा ज्ञान तो मेरा ज्ञान का क्षेत्र तो भी छोड़ता नहीं है, मगर मेरा ज्ञान में पर पदार्थ झलक रहे वो ज्ञेय की सापेक्षता से बात है, वो झलकन हो रही है। मुझे तो मेरा ज्ञान जानने में आ रहा है, मुझे तो मेरे ज्ञान की स्वच्छता जानने में आ रही है। ऐसी ज्ञान की तरफ उठता वलन हो जाए तो ज्ञान की स्वच्छता रूप जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान उसकी दृष्टि में आ जाए, इसके लिए भी प्रतिभा का उपयोग गुरुदेव ने भी बहुत प्रवचनों में इसका स्पष्टीकरण किया है और अपने मंगल ज्ञान दर्पण करके एक पुस्तक भी निकाला है, उसमें मात्र गुरुदेव जी के रेफरेंस प्रतिभा के अनुसंधान में उसमें छपे हुए हैं। अगर किसी को चाहिए तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं। उसमें बहुत सारे रेफरेंस है, इतने रेफरेंस है कि अपन ढूंढे तो भी इतने रेफरेंस नहीं निकाल सकते। हमारे राजकोट में जो ब्रह्मचारी सोनाबेन है उसने बहुत इसमें अच्छा काम किया है और वो प्रतिभा शब्द पर ही जहाँ जहाँ जो जो शास्त्र में प्रतिभा शब्द आया है और गुरुदेव जी ने उसका जो अर्थ किया है वो गुरुदेव का ही अक्सर उसमें छपाई हुई है। तो आप लोगों को उसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट हो तो आप मेरे को बोलना, तो मैं वो फल भी आपको भेज दूंगा। अभी मैं संजीव जी को देता हूँ।
आपके लिए
प्रश्न कहाँ है? अपने जी भाई सबके लिए यही प्रश्न के कैसे
है प्रश्न? अरे गड़बड़ हो जाएगा, मैंने नहीं कहा तो वो कहेंगे आपने कहा था। अभिप्राय शब्द समझाओ, परिणमन शब्द समझाओ। आदित्य बहुत अच्छा है, बहुत ही समझ लीजिए प्रचलित ये विषय हो गया है। पूज्य गुरुदेव श्री ने सारे जीवन अभिप्राय का ही स्पष्टीकरण किया है और जिस संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग होता है वो मुख्यतया श्रद्धा के अर्थ में होता है, यानी जो मान्यता है विश्वास है वो श्रद्धा की पर्याय है। मिथ्या हो तो मिथ्यात्व है, सम्यक हो तो सम्यक है, तो वो अभिप्राय को अपन को श्रद्धा की पर्याय से समझना चाहिए। एक दूसरे संदर्भ में भी इसका अर्थ होता है कि नया जो है नए प्रकरण आता है तो ज्ञाता के अभिप्राय को या वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। तो वहाँ अभिप्राय शब्द जो है वो ज्ञान के एंगल, ज्ञान में जो व्यू है, एक अपे एक धर्म को मुख करना। धवला जी में तो प्रश्नोत्तर है और ये अपने नए चक्र में दिए हैं। अभिप्राय इत्यस्य को अर्थ, अभिप्राय का क्या अर्थ है? तो निगाह वस्तु के एक धर्म को मुख करना और अन्य धर्मों को गौण करना। तो ये जो ज्ञान में ऐसी प्रवृत्ति होती है उसको भी अभिप्राय कहते हैं। तो जब नयों का प्रकरण हो तो ज्ञान के अभिप्राय को समझना और मोक्ष मार्ग का प्रकरण हो तो श्रद्धा वाला अर्थ लेना चाहिए। परिणमन शब्द तो जो गुणों का व्यक्त रूप है, उत्पाद व्यय रूप अवस्था है, किसी भी गुण की हो उसको परिणमन कहते हैं। भाव आश्रव द्रव्य आश्रव, भाव बंध द्रव्य बंध, भाव संबंध द्रव्य संबंध, भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा, प्लीज समझाओ। वैसे तो ये संजीव जी के लिए लिखा है,
सभी पे नाम लिखे हैं, क्या करूं?
अच्छा तो ठीक है, उनकी तरफ से मैं आपसे कहता हूँ,
मैं भी कहता
हूँ, जब जीव के भावों की चर्चा हो तो भाव शब्द लगा के उसको संबोधित करते, जीव की पर्यायों की बात हो तो भाव शब्द लगाते और जब उद्गल कर्म की पर्यायों की बात होती है तो द्रव्य शब्द लगाते हैं। ये प्रचलित पद्धति है। और जैसे द्रव्य लिंग भाव लिंग, तो द्रव्य लिंग क्या है? वो शरीर की क्रिया है, भाव लिंग क्या है? वो जीव का परिणाम। तो इन्हें सबको भाव वाले जो है वो जीव के परिणाम समझना चाहिए। रागादिक भाव है, ये पहले भी ये प्रश्न बहुत अच्छा चल चुका है 2-3 मिनट पहले कि भाव आश्रव और भाव बंध में क्या अंतर, ये दो अलग अलग पर्याय है क्या भाव आश्रव और भाव बंध की? वास्तव में रागादि भाव ही भाव आश्रव है और उसमें पृथ्वी प्रदेश स्थिति बंधन में निमित्त होने की योग्यता नैमित्तिक भाव है तो वो उसका भाव बंध है। शुद्धि का प्रारंभ होना ये भाव संवर है और शुद्धि की वृद्धि होना ये भाव निर्जर है। द्रव्य कर्म है जो वो कर्म की स्थिति। आत्मा की यात्रा निगोद से सिद्ध तक की है, सांप सीढ़ी के खेल की तरह भाषित होती। गुण स्थान की अपेक्षा, ग्यारहवां गुण स्थान से गिरकर जीव निगोद तक पहुंचता है। खेल में भी कुछ ऐसे ही है। गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ गिरने की बात नहीं है, ऊपर उठने की बात है। थोड़े आपके विचार रखें, जो गुरुदेव के विचार है तो हमारे विचार। वास्तव में देखिए, एक उपदेश बोध होता है, एक सिद्धांत बोध होता है। तो वस्तु स्थिति तो ये है कि हो सकता है जीवन एक बार सम्यक प्राप्त करके और ग्यारहवें स्थान तक भी चला गया हो। और भजनों में भी आता है, जीवन के परिणामनी की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। लेकिन जब कोई सफल खिलाड़ी जब खेलने के लिए मैदान में उतरता है तो वो ये विचार नहीं करता कि मैं मात्र 50 रन ही बनाऊंगा या 100 रन ही बनाऊंगा। वो तो अनलिमिटेड जब तक आउट ना हो जाए, आउट होने की सोचते ही, क्या कोई आउट होने की सोच के मैदान में हो सकता है क्या? या कोई व्यापारी दिवालिया होने की प्लानिंग करके भी अगर दिवालिया हो जाऊंगा तो ऐसा वकील करूंगा, ऐसा प्लानिंग करके कोई व्यापार शुरू करता है? आप गाड़ी से यात्रा करते हैं, फ्लाइट से यात्रा करते हैं, कार से आप मुंबई जाएंगे तो कहीं पे पलट जाए तो उसके लिए ये इंतजाम कर ले रहे हैं, ऐसा कुछ प्लानिंग करके करते हैं। यानी गिरने की बात वो हीनता की बात, हीन पुरुषार्थ की बात। भले जीव गिरता है इसमें कोई संदेह नहीं, गिरता है, लेकिन हम अपने संकल्प में गिरने को स्थान ही क्यों दें? तो ये गुरुदेव की बहुत बड़ी महानता है कि वो श्रोता को इतना सम्मत प्रदान करते हैं कि तुम गिरने की सोचो ही ना, तुम तो हम ग्यारहवा भी क्यों तो सीधे चपट श्रोणी आरोहण करके सिद्ध दशा को पाएंगे, ऐसा संकल्प करना चाहिए। सांप सीढ़ी
का ये भी जो सांप सीढ़ी खेलने वाला व्यक्ति है वो भी गिरने के लिए नहीं।
हाँ, वो तो बेचारा धोखे से नंबर आ जाते तो सांप के मुंह में पहुंच जाता है,
वो भी जाता है
करके
थोड़ी।
कोई भी खिलाड़ी ये थोड़ी कि मैं हार जाऊंगा ऐसा सोच के। सिद्धांत नियम और वस्तु व्यवस्था में क्या फर्क है? वस्तु की परिणमन व्यवस्था वो एक विशेष नियमों के आधार पर चलती है, उन्हीं नियमों को अपन सिद्धांत भी कह सकते हैं। जैसे दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, इस संदर्भ में एक बात बताऊं, प्रशिक्षण शिविर में हमारे यहाँ जब हम लोग पढ़ाते हैं तो एक बात आती है कि पाठ में जो भी परिभाषाएं सिद्धांत और तथ्य, तीन बातें जो फैक्ट तथ्य वाक्य हों, सिद्धांत वाक्य हों और परिभाषा वाक्य हों, उन्हें आप क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में चेंज करके बच्चों को याद कराएं, समझाएं, सब प्रशिक्षण शिविर में आता। तो मैं उसके खुलासे में कहता हूँ तीनों में अंतर कैसे समझे। तथ्य माने फैक्ट, विश्व में 6 द्रव्य हैं, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, ये फैक्ट है, वस्तु स्थिति। ठीक है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब ये परिभाषा आ गई, ये सिद्धांत भी नहीं, ये परिभाषा है, परिभाषित किया गया है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये सिद्धांत। तो सिद्धांत का एक प्रचलित अर्थ तो ये है कि हम जो वस्तु के परिणमन की व्यवस्था है वो इस सिद्धांत पर आधारित होती है। एक आध्यात्मिक अर्थ भी ये होता है कि वो नियम जिसके अंत में सिद्ध दशा फलित हो गए, जैसे अपना ये चल रहा है ना, ये चार मनियों का तात्पर्य बीच राग का। तो आप ये देखिए, जैसे निमित्त उपादान तो कार्य उपादान की योग्यता के अनुसार ही होता है, निमित्त से नहीं, ये सिद्धांत है, ख्याल में आए। अब इसको कहाँ तक ले जाना, वितराग तक ले जाना। कैसे वितराग का निकलती है कि निमित्ताधीन दृष्टि हटाओ, अपने स्वभाव का आलम बन लो। ऐसे त्रिज्ञान योग में जितने जितने विचार बिंदु हैं, द्रव्य गुण पर्याय है, प्रमाण है, निक्षेप है, और समझ लीजिए वस्तु की प्रलंबन व्यवस्था है, क्रमबद्ध पर्याय है, दृष्टि का विषय है, ज्ञान प्रदान, हरेक में से विकलांगता कैसे निकलती है, ये हमारा इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। तो सिद्धांत माने हम अंत में सिद्ध हो गए तो सिद्धांत, ये सभी आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है।
आगे प्रश्न है, आप तीन लोग का जो वर्णन करते हैं समझाने की जो स्टाइल है वो ऐसी लगती है मानो आप स्वयं जाके आए हो। हो सकता क्या हुआ है जाके आए हो, सच आप लोग भी तब जाके आए हैं
लेकिन भूल गए,
लेकिन भूल गए। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, के प्रश्न तो और है आगे, देखा ऐसा लगता है कि आप जाके आए हो। आप ये बताएं कि आपने सब कुछ बाई हार्ट किया है या फिर कितनी बार आपने इसका अभ्यास किया है। मैंने कितनी बार किया है या मैंने कैसे किया है, इससे कितना प्रयोजन सिद्ध होगा
जानने की।
ये तो सहज है सर, और याद करने की दृष्टि से तो याद किया नहीं, फिर वही करुणाम योग की उपयोगिता संबंधी पॉइंट बतलाता हूँ, क्योंकि बातें एक रूप है, बदलती नहीं है, इसलिए याद आसानी से हो जाती है। आप बाजार से कोई चीज लाए 475 रुपए की लाए थे, आपने किसी व्यक्ति को 600 रुपए बदला दिया, गलत बता दिया, अगली बार वो दोबारा पूछेगा तो आप ही सोचेंगे पहले कितना बदलाया था। माने गलत बात याद नहीं रहती, और जो है यदि वही कहेंगे तो हमेशा याद रहेगा। करुणामय योग की बातें कभी नहीं बदलती, 608 जीव मोक्ष जाते हैं तो सब जगह जहाँ पढ़ोगे यही बात है, तो अब इसमें फेरफार का काम ही नहीं है, कुछ गड़बड़ी का काम ही नहीं है, तो सहज याद हो जाती है। अभ्यास कितनी बार किया है तो कितनी बार तो नहीं है, तो निरंतर अभ्यास का काम है, ठीक है ना, निरंतर अभ्यास चलते रहना चाहिए और आप लोग ये अभ्यास करें, ऐसी भावना है, ऐसी बात है। प्रश्न है, आज ऐसा सुनने में आया कि चरणानुयोग समय के अनुसार बदलता है, तो क्या नियम जो पहले थे वे आधुनिक समय में लागू नहीं पड़ते, क्या समय के अनुसार बदलना फ्लेक्सिबिलिटी को जन्म देता है। देखो भाई चरणानुयोग क्या है, आचरण की मुख्यता से बात है ना। अब जैसे मान लो आज यदि हम चरणानुयोग शैली में आपको उपदेश दे रहे कि भैया टीवी देखना पाप है, तो सामने से व्यक्ति मेरे से प्रश्न करता है कौन से शास्त्र में लिखा है, शास्त्री जी पुराने लिखे, टीवी तो आपकी 40-50 साल से है, अब 50 साल पहले जो शास्त्र लिखे हैं उनमें टीवी नहीं देखना चाहिए वर्णन कहाँ मिलेगा, अब क्या करें बताओ। तो चरणामय योग की बात है या नहीं है, कोई अभक्ष्य पदार्थों के संदर्भ में ऐसी नई नई चीजें टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसे सिगरेट है और इस तरह की चीजें आती है बनती रहती है नई नई, और यदि उन्हें त्यागने की प्रेरणा दी जाती है तो आप कहें शास्त्र में कहाँ लिखा है। तो चरणानुयोग को विकृति को छुड़ाने के लिए दिया गया प्रेरणात्मक उपदेश है, जो भी देशकाल परिस्थिति के अनुसार मौजूद व्यक्तियों में कुछ विकृतियां देखी गई, जो भी विकृतियां हमने देखी उन विकृतियों को छुड़ाने के लिए आप जिस तरह का प्रेरणा उपदेश देंगे वो चरणानुयोग है। अब ये समय के हिसाब से होता है, देखिए मूल जो बातें हैं जैसे मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा है, ठीक है ना, आचार्यों के 36 मूल गुण, उपाध्याय के 25 मूल गुण, ऐसी जो चर्चाएं होंगी, 5 महाव्रतों का स्वरूप है, 5 समितियों का स्वरूप है, ये तो सदा काल से एक रूप ही है, इसमें तो कोई परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं है। मैंने जो परिवर्तन संबंधी जो बात कही है वो इन लोक व्यवहार संबंधी प्रकरणों में परिवर्तन की बात कही है, ऐसा थोड़ा बहुत परिवर्तन करणानुयोग में संभव नहीं है। मेरा उद्देश्य चरणानुयोग में परिवर्तन होता है ये सिद्ध करने का नहीं था, मेरा उद्देश्य तो ये सिद्ध करने का था कि करणानुयोग की बातों में परिवर्तन संभव नहीं है। मूल पॉइंट समझ रहे हैं आप? पॉइंट तो ये सिद्ध करना है कि करणानुयोग में किसी रूप में परिवर्तन संभव नहीं है। चरणानुयोग में हो जाता है, परमानुयोग की शैली में हो जाता है। आप पद्म पुराण पढ़ेंगे तो कई लोगों ने लिखे हैं रामचंद्र जी की जीवन गाथाएं, और सबकी भाषा शैली अलग अलग है। घटना को प्रस्तुत करने की सबकी शैली अपनी अपनी होती है, तो प्रथमानुयोग बदलता रहता है, और प्रथमानुयोग में ऐसे भी बदल जाता है परिस्थितियों के हिसाब से भी, और समझिए युग के हिसाब से भी। तीर्थंकर बदलेंगे, चक्रवर्ती बदलेंगे, तो प्रथमानुयोग बदलेगा। तो प्रथमानुयोग चरणानुयोग में तो
क्षेत्र का प्रथमानुयोग अलग होगा,
हाँ,
भूतकाल की चौबीसी का अलग होगा, भविष्य की चौबीसी का अलग,
ऐरावत क्षेत्र का अलग होगा, विदेश क्षेत्र का अलग होगा, सब जगह का प्रथमानुयोग उसके हिसाब से होगा, क्षेत्र काल परिस्थिति के हिसाब से।
एक मिनट
देखिए, इसमें एक बात समझने की है, क्योंकि पर्टिकुलर क्रिया को कोई शाश्वत नहीं होती, लेकिन उसका जो फार्मूला है चरणानुयोग में, जो उसका मूल तत्व है, मूल भावना, कषायांश कम होने से या दो कषाय टूटने से, फिर जो रागांश शेष है, तो उसमें हिंसा से बचना, झूठ से बचना, स्थूल पापों का त्याग होना, ये कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये करणानुयोग से भी रिलेटेड है ना। ये तो अनंत आनंदी अपुत्या करने में भी कषाय का संयोग सम हो गया, तो उससे संबंधित है। अब उससे बचने के लिए जो देश काल में जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, कि स्थूल हिंसा से बचना, तो वो जिन जिन कार्यों से स्थूल हिंसा जिस काल में होती है उस काल में वो बचेगा। ख्याल में आया ना? मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है तो फिर टैक्स चोरी नहीं करना, ये उसमें आ जाएगा, और अगर वो व्यापार ही नहीं करता है तो उसके लिए टैक्स चोरी वाली फार्मूला लागू नहीं होगा। तो वो कषायांश कम हुआ, उसके निमित्त से जो पापों में कमी आई, वो मूल चीज है, वो शाश्वत रहती है, ख्याल में आया? और बाद में क्रिया के माध्यम से चेंज होता है।
ये बदलना जरूरी भी है भाई। जैसे तीन मकार की चर्चा आती है ना, मध्य मांस मधु, इन तीन का त्याग, तो हम लोग ऐसा भी कहने लगे मध्य मांस मधु का त्याग तो चलो करते ही है सभी, लेकिन वर्तमान समय में तो तीन तकार के त्याग की जरूरत है, सिगरेट, सिनेमा और शराब। इनके त्याग के बिना कैसे समय दर्शन की तरफ बढ़ेंगे आगे? और आजकल तो समझिए इंटरनेट की चर्चा हो गई है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये ऐसा हो गया है कि दिन रात उसी में उलझा फंसा रहता है व्यक्ति। तो आगे ऐसा भी है कि चरणानुयोग लिखते समय संतों को ऐसा भी लिखना पड़ेगा कि भैया इन चीजों से दूर रहो,
उसका परिमाण व्रत,
उनका परिमाण व्रत,
अष्टमी के दिन ये नहीं करूंगा,
अष्टमी चतुर्दशी के दिन त्याग करें इसका।
सीरियस है?
हाँ, सच में मैं करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने कही थी आपसे,
कही थी
कोटा में, कही थी ये बात मैंने, अष्टमी चतुर्दशी के दिन इंटरनेट का त्याग, व्हाट्सएप नहीं देखना,
नौमी के दिन सुन लेंगे, नौमी के दिन देख लेंगे।
चलिए आगे प्रश्न, आपने बताया ये हो गया ना, तो प्रश्न है चरणानुयोग के नियम बदलने की बात है, दूसरा है, दूसरा कुछ लिखा है नीचे, देख रात्रि भोजन। आपने बताया कि चरणानुयोग में चर्या बदलती है देश काल में, तो क्या नियम बदलते हैं या नए नियम बनते हैं? जैसे आपने कहा रात्रि भोजन की बात पहले नहीं थी, बाद में नहीं थी, ये तो क्या है? अष्ट मूल गुणों के अंदर त्याग की चर्चा तो सदा से ही है, अष्ट मूल गुणों में उसको जोड़ने की बात है। ये प्रश्न संख्यात असंख्यात अनंत, कृपा करके समझावे, संख्यात किसे कहें, असंख्यात किसे कहें और अनंत किसे कहें? बहुत सरल सी परिभाषा है इसकी, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से जितनी काउंटिंग जानी जा सके वो सब संख्या है। संख्या माने क्या? जिसको मति श्रुति ज्ञान के माध्यम से जाना जा सके वो सब संख्या। इतनी संख्याएं हैं तो शास्त्रों में 150 अंक प्रमाण तक, 184 अंक प्रमाण तक संख्या की बात कही है। अचलात्म नाम दिया है उसका, उत्कृष्ट संख्या का, बिल्कुल कैसे कैसे बनते हैं उनकी चर्चा की इतने अंक प्रमाण तक। तो अचलात्म कहा है उसको, ये उत्कृष्ट संख्या है। उसमें प्लस वन कर लो, सिर्फ एक जोड़ो उसमें, और मत प्रतिज्ञा ये कहेंगे
बहुत हो गया,
बहुत हो गया, दिमाग के ऊपर से गई है ये बात, ठीक है। वो असंख्यात है, उसको कौन जानेगा, अवधि ज्ञानी मने पर ये ज्ञानी। तो परिभाषा क्या निकली, जिसको मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से न जाना जा सके और अवधि मने पर ये ज्ञान के माध्यम से जानने में आवे, ऐसी संख्या असंख्यात है। और अवधि और मने पर ये ज्ञान रूपी कंप्यूटर भी जहाँ फेल हो जाए जिस काउंटिंग में, और सिर्फ केवल ज्ञान के माध्यम से जाना जा सके, वो अनंत है, ठीक है। ये संख्या पर संख्या और अनंत की अत्यंत संक्षिप्त परिभाषा है। वो मनुष्यों की संख्या है, उनकी अंक प्रमाण है, हाँ मनुष्यों की संख्या उनकी अंक प्रमाण है। प्रश्न है, वर्तमान में जो पृथ्वी पर महासागर दिखाई देते हैं जैन भूगोल से उनका क्या मेल बैठ सकता है, क्या हिंद महासागर ही लवण समुद्र है। पहली बात तो जैन दर्शन में भूगोल नाम की कोई चीज ही नहीं है, पूरे जिनागम में भूगोल शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, भूगोल है ही नहीं, भू माने जमीन धरती, तो वो ग्लोब की जैसी भूल तो है नहीं, ये विज्ञान का शब्द है ना। जैन दर्शन के हिसाब से तो तीन लोक है, जम्बू द्वीप है ना, ढाई द्वीप है, जम्बू द्वीप भी जो गोलाकार है वो गोल भी फ्लैट है, और मध्य लोक भी स्क्वायर है, द्रव्य नाड़ी की अपेक्षा से एक राजू लंबा एक राजू चौड़ा, और वैसे मध्य लोक को देखे तो सात राजू विस्तार और एक राजू चौड़ाई, सात भाई एक राजू का, तो गोलाकार जैसी स्थिति बनती नहीं है। दूसरी बात ये जो महासागरों की जो बातें है, ये सब गंगा सिंधु आदि नदियों से निकले हुए नाले हैं जो इकट्ठे हुए हैं हिंद महासागर आदि, इनका संबंध अपने जो लवण समुद्र है उससे लिंक तो है ये कहीं न कहीं, क्योंकि लवण समुद्र का जल खारा कहा गया है और इन समुद्रों में जल खारा दिखाई देता है। लवण समुद्र में उतार चढ़ाव की चर्चा शास्त्रों में की है, ज्वार भाटा की बात कही है, तो जो लवण समुद्र के अंदर ज्वार भाटा की चर्चा की है उसके कारण तो अलग प्रकार से बतलाए हैं। मैंने बहुत विस्तार से भारतीय विद्या भवन में चर्चा की थी इस प्रकरण के बारे में, उससे जुड़े हुए जो भी समुद्र दिखाई देते हैं यहाँ हमारे धरातल पर इस अर्थ पर, उनमें भी ज्वार भाटा आता हुआ दिखाई देता है। इसका संबंध चंद्रमा से भी नहीं है, चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो ईरान के उत्तर में कास्पियन सी है और उसमें ज्वार भाटा नहीं आता, समुद्र है बहुत बड़ा, उसका पानी भी खारा नहीं, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका लिंक लवण समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं ऐसा है, तो पानी कहीं ना कहीं आगे जुड़ा हुआ है, ऐसा उसका समाधान किया जा सकता है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती पादक जीव को नरकतम छह महीने में एक बार आत्मानुभूति होती है, कम से कम अगर हो तो कितने काल में हो सकती है, रोजाना भी हो सकती है, कोई बाधा नहीं है उसमें। चौथे गुणस्थान वाले को आत्मा का अनुभव रोज भी हो सकता है, दो चार दिन में भी हो सकता है, चार छह महीने में भी हो सकता है, छह महीने के अंदर अंदर आत्मानुभव पुनः होने का नियम है, और ऐसा भी हो सकता है कि छह महीने में आत्मा का अनुभव नहीं हो, ऐसा भी कैसी बात कर रहे हो आप, तो गुणस्थान गिर जाएगा ना, क्या छह महीने में आत्मा का
दोबारा सम्यक दृष्टि हो,
दोबारा सम्यक दृष्टि हो जाएगा, फिर दोबारा आत्मा का अनुभव हो जाएगा। कुछ लोगों को इसमें ऐसा भ्रम रहता है कि यदि 15 दिन में आत्मा का अनुभव हो जाए तो चाहे गुणस्थान पांचवा हो जाना चाहिए, और अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव दोबारा हो जाए तो गुणस्थान छठवा पांचवा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस तरह से गुणस्थान नहीं बढ़ा सकते। गुणस्थान के बढ़ने का संबंध अंदर में कषाय चौपड़ी के अभाव से और वितरा की निर्मलता से है, उसका संबंध आत्मानुभूति कितनी जल्दी हो रही है इससे नहीं है। ठीक है, किसी उत्कृष्ट श्रावक को नग्न दिगंबर दीक्षा लेना हो तो वह पहले सातवें गुणस्थान में जाएगा या पहले कपड़े का त्याग करेगा और बाद में सातवें में जाएगा? मतलब सातवें गुणस्थान की प्राप्ति पहले होगी या पहले कपड़े का त्याग होगा? ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, कृपया स्पष्ट करें। ऐसा प्रश्न गुणस्थान विवेचन में भी उठाया गया है और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इसका जवाब है कि पहले कपड़े उतरेंगे, उसके बाद सातवां गुणस्थान होगा, फिर छठवां गुणस्थान होगा। ऐसा ही नियम है, नहीं तो कपड़े पहने हुए सातवां गुणस्थान प्राप्त होने का प्रसंग आएगा, जो कि सिद्धांत विरुद्ध बन जाएगी। बस अंतिम प्रश्न मेरे लिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जिनागम के आधार से स्पष्टीकरण करें, वे कैसे लगते हैं? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, वो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर कोई संकट जैसा नहीं है, सूर्य और चंद्रमा के विमान हैं, जो ज्योतिष देवों के विमान हैं, और इन विमानों के नीचे राहु और केतु के विमान, इन विमानों के नीचे से गुजरते हैं। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, ये सब ज्योति प्रदान करने वाले प्रकाशमान विमान हैं। राहु और केतु के विमान ये कृष्ण वर्ण के काले रंग के हैं, राहु का विमान और केतु का विमान। तो चंद्रमा के नीचे राहु का विमान और सूर्य के नीचे केतु का विमान, जब कभी भी अपनी सहज क्रम से चाल के अनुसार उसके नीचे से गुजरता है तो सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। नीचे से कोई ब्लैक चीज निकली तो ऊपर से उसका प्रकाश जाए, आना कुछ बंद हुआ, कुछ काल के लिए रुका, जिसे ग्रहण के नाम से कहा जाता है। ग्रहण का मतलब सूर्य चंद्रमा के ऊपर कोई संकट आ गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू मान्यता में वो उनके ऊपर संकट माना जाता है, और जैन मान्यता में तो इस तरह की कोई बात है नहीं, ये तो विमानों की तरह चाल है।
वो ग्रहण के दिन वो खाते नहीं है, बनाते नहीं है,
हाँ दान दक्षिणा कुछ देते हैं, वो सब बहुत तरह की हिंदू परंपरा की बात, हिंदू संप्रदाय की बात। ठीक है, मेरा पेपर तो पूरा हो गया।
वस्तु पर्याय अपेक्षा जानन पर्याय रूप है, अर्थात जीव की पर्याय जानन रूप है और द्रव्य जानन शक्ति को धरने वाली है। फिर मैं अंधा हूँ, श्री निहाल भाई भोगानी ने ऐसा कैसे कहा, क्योंकि आप खुलासा कीजिए। अभी निहाल भाई भोगानी की शैली से आप लोग तो सब परिचित ही होंगे, मैंने बोला था कि उसको कोई पर्याय से भस्म करे तो वो द्रव्य से ही जवाब देते थे। एक प्रश्न ऐसा बना कि लालचंद भाई जो थे उसने ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश लालचंद भाई और सखी भाई ने मिलकर निकाला था, तो लालचंद भाई ने उसको पूछा कि ये जो श्रोता प्रश्न पूछ रहे हैं वो तो पर्याय का प्रश्न है, आप उसको उसका स्पष्टीकरण कीजिए, आप द्रव्य से जवाब देंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा, ऐसा उसने उसको बोला। तब सोलानी जी ने उत्तर दिया कि मेरी तो शैली ही द्रव्य दृष्टि प्रदान है और उससे ही जीव का कार्य होता है, इसलिए कैसा भी प्रश्न आए उसका उत्तर द्रव्य से ही दिया जाता है, क्योंकि जो जीव की दृष्टि चिपक गई होती है वो द्रव्य से ही बात करता है, ऐसा उसने ये जवाब दिया था। और यहाँ जो मैंने आज बात की है वो बना हुआ बनाव है, और सोमानी जी को पर्याय की इतनी उपेक्षा होती थी। पर्याय की उपेक्षा अलग चीज है, पर्याय का द्वेष अलग चीज है। पर्याय की उपेक्षा तो सभी को बरतनी चाहिए और पर्याय का द्वेष सभी नहीं होना चाहिए। तो उसको उतनी उपेक्षा हो गई थी, उसको उतनी उपेक्षा हो गई थी कि ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से उसका निषेध नहीं हो सकता, ऐसा आचार्य भगवान ने गाथा में लिखा है। फिर भी उसने ऐसा बोला कि मेरे में जानने की क्रिया ही नहीं है, मैं अंधा हूं। माने कि मैं जानने की क्रिया से नायक को जानता हूं, ऐसा कोई भेद ही मुझे नहीं दिखता, मैं तो एक नायक हूं। उसका कहने का तात्पर्य ये संदर्भ में ये था, ऐसा कहना था। अपरिणामी पर दृष्टि कैसे जाए, परिणामी की दृष्टि छूट के त्रिकाणी पर दृष्टि कैसे जाए, मैं परिपूर्ण हूं परिपूर्ण हो जाऊं, ऐसा भावपूर्वक क्यों नहीं आता। आपने स्पष्ट तो किया है, फिर भी थोड़ा आप स्पष्ट करने की कृपा करें। अपरिणामी पर दृष्टि कैसे जाए उसकी चर्चा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रश्न में ले ली है। यथार्थ निर्णय वाली भूमिका आती है, निर्णय आगे बढ़ता है, श्रद्धा मिथ्या को बदलता है, उसका लक्ष्य नायक पर चलता है, तो अपरिणामी पर दृष्टि उसकी चली जाती है। परिणामी की दृष्टि छूट के अधिकारी पर दृष्टि कैसे जा रहे, ये परिणामी जो है वो परिणामी तभी ही कहा जाता है कि पर्याय द्रव्य का आश्रय करके उससे अवैध परिणाम की, तब वो परिणामी बन जाता है। अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणाम, ऐसा परिणामी का स्वरूप है। तो ये परिणामी की दृष्टि छोड़ना ऐसा नहीं है, अपरिणामी की दृष्टि लगती है तो परिणामी और अपरिणामी और परिणाम दोनों का ज्ञान रहता है, उसको परिणामी का ज्ञान बोला जाता है। परिणामी की दृष्टि नहीं होती है, अपरिणामी की दृष्टि पूर्वक परिणामी का ज्ञान होता है, ऐसा उसको समझना। उसमें मैं परिपूर्ण हूं परिपूर्ण हो जाऊं ऐसा भावपूर्वक क्यों नहीं आता, उसका पुरुषार्थ नहीं चलता है, पुरुषार्थ की कमी है। क्षण क्षण में पुरुषार्थ चलता रहना चाहिए, पुरुषार्थ के बिना कार्य की संपन्नता कभी किसी की नहीं होती है। जो जीव को कार्य संपन्न होता है वो बहुत पुरुषार्थी होता है, तीव्र पुरुषार्थी होता है। यथार्थ स्वभाव का जानना उसको द्रव्य और पर्याय का यथार्थ निर्णय की भूमिका में पुरुषार्थ करता रहता है। पुरुषार्थी को ही सचमुच में कार्य संपन्नता होती है।
पहले उनका ले लो।
हाँ संभाल चुप को है। पहला प्रश्न जतिन भाई माने थे, देखा नहीं हमारे देवेंद्र जी को जो बात मौके थी एक्चुअली बंद रहेगी का टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ये बात करी थी समझावानी शुरुआत करेगी नदी हमारे
भव्यत्व की योग्यता और अधर अधर की पर्याय
गुरुदेव के प्रवचन में कल आया था कि कार्यशील पर्याय और क्रमबद्ध पर्याय वाली बात तो हमने सुनी है, मगर ये अधर पर्याय आपने तीसरी कहाँ से निकाली। तो ऐसा वो बात आई थी, तो अधर पर्याय कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मा में कोई गुण ऐसा नहीं है कि वो गुण का परिणाम राग रूप हो, इसलिए राग को अधर पर्याय गुरुदेव ने बोला है। इसका उत्तर बस इतना ही है, क्योंकि कोई आत्मा में गुण ऐसा नहीं है कि वो राग रूप परिणाम है, इसलिए राग को अधर पर्याय कहा गया है, ऐसा कोई गुरुदेव जी ने उसमें बताया।
آپ کو کچھ بولنا تھا؟
دیکھیے 320 کتھا چل رہی ہے, اسی میں یہ بات آئی تھی. اور بات بھویت شکتی اور پرنامک بھاو کے تین بھید ہیں, جیوتو بھویتو ابھویتو, ان کی چرچا آئی. تو گرودیو نے فرمایا کہ بھویتو ہے کہ تو سنکت پرگٹ ہوگی, ایسی یوگتا کا نام ہے. اگر یہ کوئی شکتی یا تکاری نہیں ہے, کیونکہ سدھتو پرگٹ ہوتا ہے تو بھویتو کا ابھاؤ ہو جاتا ہے. گرودیو بولے جب سدھ پریا پرگٹ ہو گئی, جب یوگتا کا کیا کام. تو انہوں نے کہا پھر یہ پریا جب کوئی گن نہیں ہے, شکتی نہیں ہے, تو یہ پریا آئی کہاں سے؟ تو گرودیو بولے ادھر سے آئی ہے. تو پھر سوتا نے پوچھا, پھر زیادہ گرودیو نے اس کا لمبایا نہیں. دیکھیے کئی یوگتائیں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی گن نہیں ہوتا, شکتی نہیں ہوتی, تو بھی پریا سمبندی یوگتا جو ہے وہ پرگٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی. جیسے ایک بات میں کہوں آپ کو, دیوگتی میں پریا میں بھی چارتر پرگٹ کرنے کی یوگتا نہیں. کیا دیووں میں پریا گت یوگتا بھی نہیں؟ اس لیے پریا گت یوگتا یہ بالکل سٹیک اور صحیح شبد ہے. اور منشیوں میں 8 برس کے بعد میں منشیوں میں پریا 8 برس کے عمر کے بعد میں سمیکت ہونے کی یوگتا آ جاتی ہے, چارتر کی یوگتا آ جاتی ہے. منشیہ میں تو محاور دھارن کر کے اور موکش جانے کی بھی یوگتا ہے. اب وہ کوئی سرکاری کرنے والی یوگتا کی بات نہیں ہے, وہ منشیہ پریا سمبندی یوگتا ہے. لیکن وچترتا یہ بھی یوگتا ہے اور اس کا پرنبن نہ بھی ہو, کیونکہ سرسوی سمے گرتی ہو جاتے ہیں. سر کہاں اس سندرب میں دیکھنا چاہوں.
نیکسٹ,
جو امریکہ نا گومی شرما تھی کوئی نے بھی اپنے فون آنے کا پرشن پوچھو ہے تو پوچھ سکتے تھے. یہ تو میں جو پوچھا پوچھا بہن جو کوئی نے پوچھو جی سیکنڈ میں بھی سوال تھے ابھی یہ الگ تھے جاتا شنی نکا وہاں شروعات میں اندر امریکن سے
નિત્ય ઉદ્યોગ રૂપ છે એટલે કે કઈ નથી, ત્યાં નિત્ય ઉદ્યોગ રૂપ નો એટલો જ અર્થ કરવાનો છે. નિત્ય ઉદ્યોગ રૂપ છે એટલે કે ચેતન પણ છે 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 એવો ગાયક ભાવ છે. નિત્ય ઉદ્યોગ રૂપ હોવાથી ક્ષણિક નથી એમ કહેવા, ત્યાં એમ આચાર્ય ભગવાને ગાથામાં કીધું છે. ક્ષણિક છે એવું નથી કીધું, ક્ષણિક નથી એમ કીધું છે.
ઉદ્યોગ કા ક્યા મતલબ હૈ? ઉદ્યોગ કિસ ગુણ કે લિયે લિયા?
ઉદ્યોગ માને કી હે 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 જના ચેતન રૂપ હે હે પ્રજ્વલિત હે
પ્રજ્વલિત હે
પ્રકાશમાન હે જ્યોતિ રૂપ હે એસા ઉસકા અર્થ હોતા હે. माने कि वो है ज्योति रूप है प्रकाशमान है प्रज्वलित है, बस उसका है पता चीज करना है.
थोड़ी
बात हाँ हाँ रूप अस्तित्व है, बस प्रकाशमान ज्योति वो भी किया है उसने.
હેલો, હા બોલો. હા
એક સવાલ સંજીવજી કરીએ. સંજીવ આપ તો જાણતા હૈ કે હમ તો બુઝુર્ગ હો ગયે અભી, તો હમારી જો દેખી કરના ભી ક્યાં સીખા દે? અભી આપકો મારે જો કરવા લોગ સિખાતા હું ઉઠે જા રહે હૈ, તો અભી દેખી કરના ભી હમે ક્યાં કિસકા ક્યાં ક્યાં કરવા ચાહીએ?
પ્રશ્ન સુના તમને સભી ને. हाँ प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं रजनी भाई कि हम लोग सब बुजुर्ग हो गए हैं तो हमारे को बेसिक करणानुयोग क्या सीखना चाहिए? देखिए करणानुयोग की चर्चा वैसे तो आज नहीं करना चाहिए मेरे को, क्योंकि अभी 3 दिन और कर रहा हूँ, मुझे चलाना है। फिर भी कहता हूँ कि करना में उनकी चर्चा प्रयोजन भूत नहीं है, डायरेक्ट प्रयोजन भूत नहीं है। द्रव्यानुयोग ही वास्तव में प्रयोजन भूत है, इसलिए अपना समय जैसे भी हो सके, जिसके पास में कम समय है, ये व्यक्तिगत निर्णय की बात है कि आपके पास में कितना समय है। यदि आपके पास में बहुत कम समय बचा है तो जो सारभूत काम है वेद विज्ञान तत्व निर्णय, वो काम कीजिए। और यदि आपको लगता है कि मैं तत्व निर्णय क्या करूँ, मैं बोर हो जाता हूँ, सुन लेता हूँ गुरुदेव का प्रवचन, सुन लेता हूँ 2 टाइम सुन लिया, 3 घंटा सुन लिया, और क्या करूँ, और करना चाहता हूँ, तो फिर आप गुणस्थान पढ़िए, मार्गणा स्थान पढ़िए, जीव समाज पढ़िए। आपको क्योंकि कर्णानुयोग में बहुत सारे विषय हैं जिधर आपका उपयोग लगता हो, कर्म की चर्चा पढ़ने में आपका उपयोग लगता है तो कर्मकांड आदि पढ़िए, पर्याप्तियां प्राण आदि यदि पढ़ने में आपका उपयोग लगता है तो उन विषयों को पढ़िए, लोक की चर्चा को सुनने समझने में आपका मन लगता है तो त्रिलोकसार आदि पढ़िए। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन सबको पढ़कर के भी निकालना तो भीतर आपका ही है। अब यहाँ भीतर आपका डायरेक्ट ही निकली पड़ी है तो क्यों नहीं उसी को स्वीकार कर लिया जाए। इसलिए समय कम है, ऐसे बुजुर्गों की बात करता हूँ, आप तो इतने बुजुर्ग नहीं है रंजी भाई, लेकिन जिनके पास वास्तव में समय कम है, मैं उनको सुझाव नहीं दूंगा कि वे घूमट पार खोल करके बैठे या धावला दिख लेकर के बैठ जाए। मैं उनको तो यही सुझाव दूंगा कि आप समय सार पढ़े, आप नियम सार पढ़े। अपने जिगानी ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है, यदि अनुभव हुआ है तो उसी स्वरूप में स्थिर कैसे रहा जा सकता है, इसी का अभ्यास करें, यही कारण है।
बहुत
बहुत धन्यवाद। तो आज की सभा का यहाँ पर अंत होता है। जब जीव चेतन की ओर दृष्टि करता है तो संजीवनी प्राप्त होती है और जीव अपहृत हो जाता है। तो पहले आपका बहुत बहुत बोला की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय जगत।
He missed you. All right, I guess I'm going to go to the
hospital.
I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital. I'm going to go
to the hospital. I'm going to go to the રજની ભાઈ તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું છે ને
Thank you.